आरव्य और आर्या को साहिबा के भरोसे छोड़कर आरव और आयु पार्टी के लिए गार्डन एरिया में आ चुके थे। वहां बाकी के मेहमान भी इकट्ठा थे। माहिरा वापस दुबई जा चुकी थी, इस वजह से वो पार्टी में नहीं आई थी। आरव गेस्ट के साथ बिजी था। आयु का दिल अभी भी अपने बच्चों में ही अटका हुआ था। वो पार्टी में ध्यान देने के बजाय बार बार घर की तरफ देख रही थी और बेचैन से होकर एक जगह अकेले बैठी थी। उसे परेशान देखकर जयजी और ताराजी उसके पास गए। तारा की आयु के पास बैठते हुए बोली, जुड़वा बच्चे संभालने मुश्किल होते हैं ना? ताराजी की आवाज़ सुनकर आयु का ध्यान टूटा। उसने उनकी तरफ देखकर हल्का मुस्कुराकर कहा, हाँ बहुत ज़्यादा मुश्किल, पता नहीं आप कैसे कर लेती होगी, जबकि रुद्र भैया भी उस टाइम बच्चे ही थे। आयु की बात सुनकर जयजी ने कहा, ऊपर से उस टाइम तुम्हारी मॉम बिजनेस में भी मेरी हेल्प किया करती थी। वैसे अब तुम्हें समझ आ गया होगा कि हमने तुम्हें तुम्हारे दादू के पास रहने के लिए क्यों भेजा था। जानती हूँ डैड, आप प्लीज़ आप सफाई मत दीजिए, वो मेरा बचपना था जो मैं आपसे इस बात के लिए बहस करती थी कि आपने अनु के बजाय मुझे दादू के पास रहने के लिए भेजा, आयु ने आइज रोल करके कहा। ताराजी बात को आगे बढ़ाते हुए बोली, इसके अलावा एक कारण और था, डॉक्टर ने तुम्हें नेचुरल एनवायरनमेंट में रहने के लिए कहा था, इस वजह से भी हमने तुम्हें दादू के पास भेजा। तुम कुछ ज़्यादा ही फिक्र नहीं कर रही उनकी, अभी तो वो बहुत छोटे हैं, अभी से तुम्हारा ये हाल है तो उनके बड़े हो जाने पर क्या करोगी। ताराजी सही कह रही थी, आयु को फिर हॉस्पिटल भी ज्वाइन करना था। उनकी बात सुनकर आयु कुछ पल सोच में पड़ गई और फिर तारा की तरफ देखकर कहा, आप ठीक कह रही हैं, आरव ने एक नैनी हायर की है, हो सकता है वो मेरी कुछ हेल्प कर सके। बाकी मेरा मन नहीं कर रहा कि मैं अपने बच्चों को किसी और के पास छोड़ूं, वो इसलिए क्योंकि तुम कुछ ज़्यादा ही इमोशनल हो। चलो अब अपना मूड ठीक करो, सब पार्टी में एंजॉय कर रहे हैं और तुम अकेले यहाँ बैठकर घर को घूरे जा रही हो। दोनों बच्चे आराम से सो रहे होंगे तो ज़्यादा ध्यान मत दो, ताराजी ने आयु को समझाया। उनके कहने पर आयु वहां से खड़ी हुई और पार्टी में सबसे मिलने लगी। कुछ देर बाद आरव और आयु ने केक कट किया, फिर मूड को लाइट करने के लिए डांस फ्लोर पर म्यूजिक प्ले हुआ। रायशा भी डांस करना चाहती थी, ऊपर से पार्टी में मंथन भी आया हुआ था, लेकिन वो डायरेक्ट जाकर उसे डांस के लिए अप्रोच नहीं कर सकती थी। डांस फ्लोर पर आरव, आयु, साक्षी, अयान, कबीर और युवानी थे। रायशा इधर उधर नर्वस होकर देख रही थी, तभी मंथन उसके पास आया और धीरे से बोला, शैल वी डांस? रायशा ने मुस्कुराकर हामी भरी और वो मंथन के साथ डांस फ्लोर पर चली गई। सबके फ्लोर पर आते ही म्यूजिक प्ले हुआ। आरव ने आयु को खींचकर अपने करीब किया और उसकी कमर पर हाथ रखकर सिंग किया, कोई जागे सोए मुझ में, मेरी रातें और मेरे दिन सारे खोए उसमें। रायशा मंथन की आंखों में देखते हुए उसके साथ डांस कर रही थी। कोई इतना अपना लागे, मेरा नादान ये दिल जैसे धड़के उसमें। कबीर ने युवानी को लिफ्ट करके सिंग किया, मुझे जो हुआ है इसकी ना दवा है, किसी ने छुआ है दिल ये, किसकी नज़र का है असर, पूछे जो कोई तो तेरा नाम दूँ, पूछे जो कोई तो तेरा नाम दूँ। अयान साक्षी की कमर पर अपने दोनों हाथ रखकर मुस्कुरा कर बोला, मैं कह दूँ सभी को कि तेरा ही है ये असर, पूछे जो कोई तो तेरा नाम दूँ, पूछे जो कोई तो तेरा नाम दूँ। डांस करते हुए वो पार्टनर स्वैप कर रहे थे। आयु अयान के साथ थी तो आरव रायशा के साथ डांस कर रहा था। आरव ने आयु को घुमाकर अपने करीब किया, कोई दस्तक दे के दिल पर, मिलने को आता है मुझ में रह जाता है। आयु ने आरव के गाल पर हल्के से किस करके कहा, कोई किस्मत जैसा लागे, खुशियां इन हाथों पे लिखता ही जाता है। आरव आयु को लिफ्ट करके सिंग किया, ये कैसी खता है जिसकी ना सजा है, किसी ने छुआ है दिल ये, किसकी दुआ का है असर, पूछे जो कोई तो तेरा नाम दूँ, पूछे जो कोई तो तेरा नाम दूँ। सब अपने अपने पार्टनर के पास वापस आ चुके थे। अयान ने डांस करते साक्षी की आंखों में देखा और हल्के इमोशनल मूड में कहा, जरी वाले कागजों में लिपटा हुआ, कितने हसीन रंगों में रंगा हुआ, ये क्या तोहफा खुदा ने मुझे है दे दिया, ये क्या तोहफा खुदा ने मुझे है दे दिया। साक्षी ने अयान को स्माइल करने का इशारा किया और उसे इर्द गिर्द घूमते हुए सिंग किया, लबों से राज ये फिसल ना जाए यूं, लबों से राज ये फिसल ना जाए ना यूं, पिघलने लगा है किसके लिए मेरा सब्र, पूछे जो कोई तो तेरा नाम दूँ, पूछे जो कोई तो तेरा नाम दूँ। इसी के साथ उनका डांस खत्म हो गया और सब क्लैपिंग करने लगे। इतने टाइम बाद सब एक साथ थे और वो भी खुश। गौरवी जी छवि के पास खड़ी थीं। उन्होंने छवि से मुस्कुराकर कहा, तुम यकीन नहीं करोगी लेकिन तुम्हारे आने के बाद मेरा आरव फिर से खुश रहने लगा है, अगर तुम नहीं जाती तो सब कुछ हमेशा ठीक रहता, जो हो गया उसे बदला तो नहीं जा सकता है मम्मी जी, आप फिर से मुझे सास की तरह ताने मारने लगी, यहाँ मेरे शिफ्ट करते टाइम आपने मुझे प्रॉमिस किया था कि आप मुझे पहले की तरह प्यार से रखेंगे,
मेरी सारी गलतियों के लिए मुझे माफ करोगी, फिर आज अचानक से ये बात फिर से क्यों बोल रही हैं आप? छवि ने गौरवी जी की तरफ घूरते हुए पूछा। गौरवी जी ने जवाब में कहा, मैं तुम्हें ताने नहीं मार रही हूँ, बस बता रही हूँ कि आरव अपनी माम से दिल से कभी नफरत नहीं कर सकता था। छवि ने मुस्कुराकर उनकी बात पर हामी भरी। बाहर पार्टी अपने जोरों पर थी और पार्टी शुरू हुए लगभग 3 घंटे बीत चुके थे। बीच में साहिबा ने कॉल करके बच्चों की अपडेट दे दी थी कि दोनों बच्चे अब तक सो रहे थे, तो आरव ने छवि और गौरवी जी को अंदर नहीं जाने दिया। वहीं अंदर साहिबा ने खिड़की से झांक कर देखा तो सब पार्टी में बिजी थे। आयु का ध्यान भी अब बच्चों की तरफ नहीं जा रहा था। उन्हें देखकर साहिबा ने अपने मन में कहा, ये सही वक्त है जब मैं इन दोनों को यहाँ से लेकर जा सकती हूँ। इन्हें देखकर लगता नहीं कि उनकी पार्टी 2-3 घंटे और खत्म होगी, और जब तक ये अंदर आएंगे तब तक मैं बच्चों को लेकर इस देश से निकल चुकी होंगी। साहिबा के दिल की धड़कनें अभी बढ़ी हुई थी क्योंकि इस वक्त को बहुत बड़ा काम करने जा रही थी। उसने आरव्या और आर्या को एक ही स्ट्रॉलर में लिटाया। वहां से बाहर निकलने से पहले साहिबा ने बुर्का पहन लिया था। उसने दोनों बच्चों को चेक किया तो दोनों गहरी नींद में सोए हुए थे। साहिबा का प्लान पहले से ही बनाया हुआ था, इसलिए उसे पता था कब और कैसे निकालना है। बाहर निकलने से पहले उसने अपना ब्लूटूथ ऑन किया और किसी से कॉल पर कहा, मैं यहाँ से बाहर निकल रही हूँ, मुझे गाड़ी तैयार चाहिए, मैं एयरपोर्ट पहुँच जाऊँगी, मुझे कोई पंगा नहीं चाहिए, तो दोनों बच्चों को सौंपने के बाद मैं इस्तांबुल के लिए निकल जाऊँगी। अपनी बात खत्म करने के बाद साहिबा ने कॉल कट कर दिया। वो घर के बैकडोर से बाहर निकली। वो दरवाज़ा अक्सर बंद ही रहता था, लेकिन साहिबा की प्लानिंग में और भी लोग शामिल थे। उन्होंने उसके बाहर निकलने का रास्ता पहले से ही बना रखा था। अंदर सब पार्टी में बिजी थे, तो वहीं साहिबा दोनों बच्चों को लेकर पिछले दरवाजे से निकल गई थी। बाहर एक काली गाड़ी उसका इंतजार कर रही थी। साहिबा उसमें बैठी। जाने से पहले उसने एक बार खुराना मेंशन की तरफ देखा और फिर ड्राइवर को वहां से ले जाने का इशारा किया। अगले ही पल साहिबा की गाड़ी एयरपोर्ट के लिए निकल चुकी थी। इन सबसे अनजान पूरी खुराना फैमिली जश्न में डूबी थी। आरव्या और आर्या का ध्यान रखने के लिए आरव ने एक नैनी बुलाई थी। उसका नाम साहिबा था, जो कि वहां किसी और के कहने पर आई थी। पार्टी जब अपने जोरों पर थी तब साहिबा दोनों बच्चों को वहां से लेकर निकल चुकी थी और किसी को इस बात की कानो कान भी भनक नहीं पड़ी।
लगभग 1 घंटे बाद साहिबा एयरपोर्ट पर पहुंच चुकी थी, जहां एक प्राइवेट जेट उसका वेट कर रहा था। साहिबा ने जल्दी से स्ट्रॉलर लिया और जाकर जेट में बैठ गई। अंदर जाते ही एक शख्स उसकी तरफ पलटा। वो फैज था, और उसी ने दोनों बच्चों को किडनैप करवाया था। दोनों बच्चों को फैज को सौंपने के बाद साहिबा ने कहा, आपको नहीं पता लेकिन मेरे लिए ये बहुत मुश्किल था। अभी तक मेरे दिल की धड़कनें बहुत तेज हैं। डर लग रहा था कहीं मैं पकड़ी न जाऊं। फैज के फेस पर ईविल स्माइल थी। उसने साहिबा के पेट थपा कर कहा, आपने बहुत अच्छा काम किया है साहिबा, और आपको इसका इनाम जरूर मिलेगा। आप चिंता मत कीजिए, वो आप तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। वैसे भी हमें इन बच्चों से कोई मतलब नहीं है, हम किसी मासूम की जान नहीं लेते। इन्हें बस हमने अपना काम निकालने के लिए किडनैप किया है। ये आरव खुराना के पास वापस पहुंच जाएंगे। साहिबा ने उसकी बात पर हामी भरी। साहिबा वहां से जाने को हुई तब तक आर्या उठ चुकी थी और वो रो रही थी। उसके उठते ही आरव्य भी उठ चुका था। अक्सर यही होता था कि दोनों बच्चे साथ में ही उठकर रोने लगते थे। उन दोनों के रोने की वजह से साहिबा को वहीं पर रुकना पड़ा। उसने फैज की तरफ देखकर कहा, जल्दबाजी में मैं बेबी मिल्क लेना भूल गई थी। इन्हें सोए हुए काफी टाइम हो गया है, इन्हें भूख लगी होगी। आप चिंता मत कीजिए, हमने सारा इंतजाम कर रखा है, फैज ने जवाब दिया। साहिबा फिर से वहां से जाने को हुई तभी फैज ने उसे रोकते हुए कहा, आप हमारे साथ दुबई चलिए, हम दोनों बच्चों को अकेले नहीं संभाल पाएंगे। हम वहां से आपको इस्तांबुल पहुंचा देंगे। मैंने आपको पहले ही कहा था मैं नहीं रोक पाऊंगी, मेरा काम बस इतनी ही देर का था। वहां मेरे भाई बहन घर पर अकेले होंगे, आपके कहने पर मैं उन्हें छोड़कर आई थी, साहिबा ने जवाब दिया। उसने रुकने से मना कर दिया था। फैज ने उसकी तरफ देखा और फिर सख्त आवाज में कहा, आपको आपके हर घंटे की कीमत मिल जाएगी, जितना कहा है उतना कीजिए। हमें गुस्सा आ गया तो आपको खुराना हाउस के आगे पटक कर आएंगे। फिर उन्हें जवाब देती रहना कि दोनों बच्चे कहाँ गए। साहिबा का इनकार फैज को पसंद नहीं आया, इसीलिए उसने उसे सीधे सीधे धमकी दी। मजबूरन साहिबा को रुकने के लिए हाँ कहनी ही पड़ी। आरव हर घंटे में साहिबा से बच्चों की अपडेट ले रहा था। साहिबा और फैज आपस में बात कर रहे थे तभी आरव का कॉल आया। साहिबा कॉल कट करने को हुई तभी फैज ने उसे ऐसा करने से मना कर दिया। उसने जल्दी से कहा, अगर आपने अभी कॉल कट किया तो उन्हें शक हो जाएगा और वो दोनों बच्चों को देखने के लिए अंदर जाएंगे। उन्हें आपकी लास्ट लोकेशन निकालने देर नहीं लगेगी, और इस वक्त यहाँ रनवे पर यही प्राइवेट जेट मौजूद है, वो हमें जल्द ही ढूंढ लेंगे। साहिबा के चेहरे पर घबराहट थी। फैज ने उसे रिलैक्स रहने को कहा। आरव का कॉल कट चुका था। उसका दूसरा कॉल आने पर साहिबा ने जल्दी से कॉल रिसीव करके कहा, वो मैं बाथरूम में गई हुई थी मिस्टर खुराना, दोनों बच्चे सो रहे हैं, आप चिंता मत कीजिए। हाँ, बीच में एक बार उठे थे तो मैंने उन्हें मिल्क दे दिया था। ठीक है, अभी कुछ देर में मेरी मॉम और दादी आ जाएगी,
तब तुम थोड़ी देर रेस्ट कर सकती हो। आरव ने जवाब दिया और कॉल कट कर दिया। वहीं आरव से बात करते ही फैज ने साहिबा का मोबाइल उससे छीना और उसे अपने एक आदमी को देते हुए कहा, इसे किसी पार्क में ले जाकर फेंक देना। वैसे तो इसकी नौबत नहीं आएगी कि वो बच्चों को ढूंढे, उससे पहले ही हम उनसे कॉन्टैक्ट कर लेंगे, लेकिन फिर भी हमें किसी तरह का रिस्क नहीं लेना। फैज के आदमी ने साहिबा का मोबाइल लिया। साहिबा उसे अपना मोबाइल नहीं देना चाहती थी, लेकिन फैज के गुस्से की वजह से वो कुछ कह भी नहीं पाई। अगले ही पल उनका जेट दुबई के लिए निकल चुका था। वहीं साहिबा को गायब हुए लगभग 2 घंटे हो चुके थे। अब तक खुराना मेंशन में इस बात की किसी को कानो कान खबर भी नहीं थी कि साहिबा दोनों बच्चों को लेकर निकल चुकी है। रात के लगभग 2 बजे के करीब पार्टी खत्म हो चुकी थी और लगभग सारे गेस्ट जा चुके थे। घर पर अब बस फैमिली मेंबर ही बचे हुए थे। आयु काफी थक गई थी, फिर भी उसने आरव से कहा, तुम मेरे साथ चलो, हम बच्चों को लेकर रूम में चलते हैं, बाद में रेस्ट कर लेंगे। तुम ना अपने बच्चों के चक्कर में आधी पागल हो गई हो मिसेस खुराना, इतनी थकी हुई हो, लेकिन तुम्हें अभी बच्चों को पैम्पर करना है। उन्हें साहिबा देख लेगी, वो उनका पूरा ध्यान रख रही है। चलो रूम में जाकर चेंज करो और आराम करो, आरव ने आयु को समझाते हुए कहा। उसकी बात पर सहमति जताते हुए गौरवी जी ने कहा, ये बिल्कुल ठीक कह रहा है, तुम ठीक हो गई हो इसका मतलब ये नहीं कि खुद की हेल्थ को इग्नोर करो। बच्चों को हम देख लेंगे, ठीक है, लेकिन फिर भी एक बार मुझे उनका चेहरा देखना है। कितनी देर से मैंने उन्हें देखा नहीं है। मुझे उनके पास जाना था, लेकिन आरव के चलते मैं नहीं जा पाई। प्लीज अब मुझे कोई रोकना मत, आयु ने जवाब दिया और उन सबको वहीं पर छोड़कर घर के अंदर जाने लगी। उसे इस तरह जाते देखकर आरव ने कहा, मैं देखता हूं इसे, बहुत गुस्सा आने लगा है इसे फिर से, हर छोटी बात पर। आप देखिएगा दादी, अभी भी ये जिद करके उन दोनों को अपने रूम में ही लेकर जाने वाली है, बोलते हुए आरव आयु के पीछे जा रहा था। आरव तेज कदमों से चलकर आयु के करीब पहुंच चुका था। उसने आयु के कमर पर हाथ रखकर कहा, फिर से तुम कहोगी कि उन दोनों छोटे बच्चों से मुझे जलन हो रही है, जबकि वो मेरे खुद के बच्चे हैं। अब मैं उनसे जेलस फील ना करूं तो और क्या करूं, मुझसे ज्यादा अटेंशन तो उन्हें मिलती है। पार्टी में पूरे टाइम तुम्हारे साथ था, लेकिन डांस करने के अलावा तुमने मेरी तरफ देखा तक नहीं, और अब देखो कैसे बेताब होकर अपने बच्चों की तरफ भागी जा रही हो। तुम मेरे मदरली इमोशंस कभी नहीं समझोगे। खैर मुझे तुम्हें समझाना भी नहीं है, मैंने सबके सामने हाँ कह दिया, लेकिन मैं अपने बच्चों के बिना नहीं सोने वाली हूँ, आयु ने आरव से सीधे सीधे कहा। हाँ पता था मुझे ये बात, मैंने पहले ही बाहर सबको कह दी थी, आरव ने आइस रोल करके जवाब दिया। बातें करते हुए आरव और आयु गौरवी जी के कमरे में पहुंच चुके थे। उन्होंने देखा वहां कोई नहीं था, ना साहिबा और ना ही दोनों बच्चे, यहां तक कि वहां सिर्फ एक ही स्ट्रॉलर रखा हुआ था। उन दोनों बच्चों को वहां से गायब देखकर आयु की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। उसके कदम लड़खड़ा रहे थे कि तभी आरव ने उसे थाम लिया।